Mayday, Mayday, United 28, United 328 Heavy, Mayday, Mayday aircraft.
तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक काफ़ी फेमस हाईजैकिंग इंसिडेंट रहा है यूएस में, काफ़ी पुराना है, 1970s का केस है, जिसमें एक प्लेन को हाईजैक किया गया था और काफ़ी एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट किया गया था एज रैंसम मनी। वो आज भी बहुत फेमस केस है, डीबी कूपर केस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं इस कहानी में। तो नवंबर 24th की बात है 1971, और यूएस में एक सिटी है छोटी सी, उसको पोर्टलैंड बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आपने वो नाइकी के जूते जो आप जानते हैं, तो नाइकी के हेडक्वार्टर्स वहीं पे ही हैं। तो पोर्टलैंड एक छोटा सा वहाँ पे शहर है, एंड वहाँ के एयरपोर्ट से एक फ्लाइट है, एक एयरलाइन है नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस करके, और वहाँ से फ्लाइट जो है सामने ही 25 मिनट की दूरी पर एक जगह आती है सियाटल वाशिंगटन करके, सियाटल नाम है उस जगह का। तो 25 मिनट की फ्लाइट है पोर्टलैंड से लेके सियाटल तक, और प्लेन वहाँ पे वेट कर रहा है, एक छोटा सा बोइंग प्लेन है और काफ़ी छोटा सा है। इनफैक्ट उसमें 36 पैसेंजर्स की जगह है और तीन पायलट्स हैं और तीन जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं। तो छोटा सा प्लेन है काफ़ी ज़्यादा, और छोटी सी फ्लाइट भी है। और थोड़ा सा डिफरेंस आज के ज़माने में ये है, अगर आपने आज की फ्लाइट्स देखी होंगी तो एक दरवाज़ा तो आपके आगे होता है, एक पीछे होता है, और लेकिन दोनों दरवाजे जो होते हैं वो साइड में होते हैं, राइट? पीछे और आगे पीछे साइड में होंगे एक तरफ से। लेकिन उस ज़माने की जो फ्लाइट्स होती थी उसमें आगे का दरवाज़ा तो वैसे ही साइड में होता था, लेकिन जो पीछे वाला दरवाज़ा होता था, और पर्टिकुलरली जो इस प्लेन का जो मॉडल था उसमें ये था कि जो प्लेन का दरवाज़ा था वो एकदम ही पीछे होता था। तो अगर आगे कॉकपिट और पीछे पूरा वो खुल के वो सीढ़ियाँ नीचे हो जाएंगे, और सीढ़ियाँ भी कुछ वो 10-12 स्टेप्स होते थे, और आप एक भी खोल सकते हैं, दो भी खोल सकते हैं, तीन भी खोल सकते हैं, वो ऑटोमेटेड होता, ऑटोमेटिक होता था कि आधा खुलेगा तो 5 स्टेप्स खुल जाएंगे, पूरा खुलेगा तो 10 खुल जाएंगे, और उस टाइप से। तो खैर प्लेन तैयार है कि लोग आपके उस पर बोर्ड करें, और अगेन ये 1970s का ज़माना है, उस वक्त क्या होता था, आज की डेट में तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, आपको बोर्डिंग पास चाहिए, और अगर आपको टिकट बुक भी करानी है तो आप पहले से ही ऑनलाइन मेक माई ट्रिप वगैरह से आप बुक करा के चलते हैं। उस वक्त का ज़माना थोड़ा सा अलग होता था, उस वक्त लोग सीधे एयरपोर्ट पहुँचते थे, वहीं के वहीं टिकट खरीदते थे और प्लेन में बैठ जाते थे। तो ऐसे ही उस दिन हुआ नवंबर 24th को कि एक आदमी आता है और वो अपना नाम डैन कूपर बताता है, और नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का जो काउंटर था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वहाँ से एक टिकट खरीदता है पोर्टलैंड से लेकर सियाटल तक। वो आता है, प्लेन में बैठता है, प्लेन नेचुरली तैयार होता है। तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि 36 पैसेंजर्स थे उस फ्लाइट में, और प्लेन था एक बोइंग 727-725 जो भी उस टाइम का एक मॉडल था, और तीन पायलट्स हैं और तीन वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, जिसमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट का नाम टीना होता है, टीना मकलाव। तो जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है और टीना एक चीज़ रियलाइज करती है कि 18 नंबर सीट पे, तो वो जो डैन कूपर नाम का आदमी था वो आके 18 नंबर सीट पे बैठा था, और उसकी साइड वाली सीट जो है खाली थी। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो रियलाइज करता है कि वो जो डैन कूपर आदमी है वो उसकी साइड में बैठी हुई जो एयर होस्टेस थी उसको कुछ बोलता है, और वो एयर होस्टेस अपनी सीट छोड़कर डैन कूपर की साइड वाली सीट में जाके बैठ जाती है। तो ये अगेंस्ट द रूल्स था, ऐसा होना नहीं चाहिए था कि एक एयर होस्टेस, अभी बस प्लेन टेक ऑफ ही किया है, अभी स्टेबल भी नहीं हुआ है, और ये जो है वो भी एयर होस्टेस होके, जिसको तो रूल्स वगैरह फॉलो करने चाहिए, वो अपनी सीट छोड़ के उठ रही है और दूसरी सीट पे जाके बैठ रही है। तो इससे पहले कि वो रियलाइज करे कि क्या हुआ, वो देखती है कि जो वो एयर होस्टेस थी जो उसके साथ जो साथ में जो काम करती थी, वो एक छोटा सा चिट पेपर का गिराती है साइड में और इशारा करती है स्टीना को कि ये पेपर पढ़ो। तो टीना घबरा जाती है, वो जाती है और पेपर उठाती है, और पेपर में लिखा हुआ था कि ये प्लेन जो है एक तरीके से हाईजैक हो चुका है, मेरे पास इस सूटकेस में एक बॉम्ब है, और अगर मेरी डिमांड्स नहीं मीट की जाएंगी तो मैं इस बॉम्ब को यहीं पे माने जो भी है मैं इस बॉम्ब को डेटोनेट कर दूंगा यहीं पे ही और सबके सब मर जाएंगे। तो आप भी अगर इस सिचुएशन में होते तो आपको भी डर लग ही जाता, तो रीना को भी वैसे ही डर लग गया। और वो आदमी जो था वो टीना ने देखा कि जैसे ही उस नोट पढ़ के टीना ने उस आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी के हाथ में ब्लैक कलर का ब्रीफ केस था। तो वो ब्रीफ केस खोलता है और अंदर टीना को साफ साफ नजर आता है कि एक बॉम्ब पड़ा हुआ है, रेड कलर के पूरा है, पूरे वायरिंग हो रखी है। और वो आदमी बस उसको दिखाता है, सूटकेस बंद करता है और विंडो के बाहर देखने लग जाता है। तो अब टीना क्या करे? तो टीना अब थोड़ा सा एक्शन में आ जाती है कि ठीक है, सबसे पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से वो जाती है, पीछे का जो फोन लेती है और आगे कॉकपिट में डायल करती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और आप लोग जो भी है नीचे अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें और बोले कि सिचुएशन ये है, तब तक मैं यहाँ पे हाईजैकर को किसी तरीके से संभालती हूँ। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी ये पायलट से ये इमीडिएटली इंफॉर्मेशन रिले करते हैं नीचे कि हमारी प्लेन हाईजैक हो गई है। और डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि इसको जो है प्लेन को लैंड किया जाएगा सियाटल में और वहां पे इसको $2,00,000 चाहिए। अगर हम आज के डेट के हिसाब से देखें कि उसकी वैल्यू क्या है तो समझ लीजिए 10 करोड़ के आसपास, 1.5 मिलियन के आसपास। माने उस वक्त वो $2,00,000 आज के रेट में कुछ 1.5 मिलियन बनते हैं, तो 10 करोड़ के आसपास की उसकी डिमांड थी। और साथ में उसकी डिमांड थी कि मुझे 4 पैराशूट भी दिए जाए, नहीं तो मैं प्लेन उड़ा दूंगा, बम फोड़ दूंगा यहां पे। तो ये जब डिमांड नीचे रिले की जाती है जो ये पायलट्स डिस्कस करते हैं, तो जब तक डिसीशन लिया जाए उतनी देर में जो है प्लेन को बोला जाता है कि जो एक वाटर बॉडी थी नीचे, माने कोई रिवर वगैरह था कोई, तो प्लेन को बोला जाता है कि जब तक हम ये सारी चीजें अरेंज करते हैं तुम एक काम करो, तुम इस प्लेन को जो है इस रिवर के ऊपर ही उड़ाओ कि अगर ये बॉम्ब फोड़ देता है तो प्लेन जो है आके नीचे पानी में ही गिरे। ऐसे ना हो कि तुम किसी सिटी के ऊपर हो, नीचे गिरे तो ऊपर तो लोग मरेंगे, नीचे भी काफी ज्यादा जो है डैमेज पहुंच सकता है लोगों को। तो प्लेन काफी देर तक ऊपर घूमता है, पर इतना जरूर है डिसाइड हो गया होता है कि इसको इसकी डिमांड्स मीट की जाएंगे। और काफी ताजुब की बात यह है कि इस पूरे टाइम पे जो ये 36 पैसेंजर्स बैठे हुए थे फ्लाइट में, इनको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो नॉर्मली अपना उठ के वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, वो अपना कोक कोई मंगवा रहा है, कोई खाना मंगवा रहा है, कोई कोई मैगजीन मंगवा रहा है, तो उनके लिए सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, उनको कोई आइडिया नहीं था। वो तो जब प्लेन लैंड करता है ना सियाटल में, वहां जाके इनको पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इनको बोला जाता है कि आप अभी बैठे रहिए, आप अभी उतरिए नहीं, आपको बस लेने आ रही है, आप थोड़ी देर के लिए फ्लाइट में बैठे रहिए। और इतनी देर में यहां पे ये डिसाइड होता है कि ये जो टीना जो एयर होस्टेस थी, जो ये बात कर रही थी हाईजैकर से, डैन कूपर से, और जो पायलट्स के थ्रू माने जो नेगोशिएट कर रही थी बीच में, उनके जो बीच की जो नेगोशिएटर थी, उसको बोला जाता है कि तुम नीचे जाओ, वहां पे तुम्हारे लिए आदमी वेट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के, वो तुम्हें जो भी तुम्हें सारी चीजें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। वो जाती है, पैसे भी लेके आती है, और वो पैसे किस में थे? एक सैक टाइप में थे, जो बोरा जिसे कहते हैं। तो बोरे में वो पैसे लेके आती है और साथ में पैराशूट भी होता है, वो आके दे देती है। और बस एक डिमांड होती है इसकी कि तुम जो है बाकी सारे पैसेंजर्स को जाने दो। तो डैन कूपर जो है इसके बारे में मान जाता है, कहता है ठीक है पैसेंजर्स भी जा सकते हैं। इनफैक्ट जो बाकी जो 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे उसमें से ये कहता है कि एक काम करो, जो 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो भी यहां से उतर जाए। तो प्लेन में बचा रह जाता है वो हाईजैकर डैन कूपर और ये एयर होस्टेस जो फ्लाइट अटेंडेंट थी टीना, और 3 को पायलट, ये सारे के सारे होते हैं। इन सारों को उतार दिया जाता है और प्लेन की पूरी प्रॉपर रिफ्यूलिंग होती है, और अब ये डिमांड करता है कि प्लेन को दोबारा उड़ाया जाए। और इसकी दूसरी डिमांड ये होती है पायलट से कि जब तुम प्लेन उड़ाओगे तो तुम 10,000 फीट पे उड़ाओगे और 200 माइल की स्पीड पे, 200 माइल समझ लीजिए 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे। तुम उड़ाओगे, तुम ये वाला मेंटेन करके रखोगे, और जो पीछे के दरवाजे हैं वो पूरा खोल दोगे, और जो लैंडिंग, ये जो सीढ़ियां जो खुलती हैं, तुम्हें पूरे सीढ़ियां भी खोल के रखोगे। तो पायलट तो साफ साफ मना कर देते हैं कि जब प्लेन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है टेक ऑफ करना, बस वो एक चीज बोलते हैं कि ठीक है हम दरवाजा खुला रखेंगे, और उसके बाद ऊपर जाके जब तुम्हें चाहिए होगा हम तुम्हें सिखा देते हैं कि कैसे वो मैकेनिकली पीछे से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और ऑटोमेटिकली वो जो है जो लैंडिंग की जो सीढ़ियां होती हैं वो भी खुल जाएंगे। तो ठीक है, वो ये भी चीज मान जाता है। और फाइनली जो है शाम के 7:30 के आसपास प्लेन दोबारा सिएटल से उड़ता है, जिसका पीछे का दरवाजा खुला हुआ होता है, और अब इसमें सिर्फ 5 लोग हैं। और जैसे ही प्लेन ऊपर आता है, जहाँ पे प्रॉपर वो जो इसने स्पेसिफिकेशंस दिए थे कि 10,000 फीट पे होना चाहिए और आपके कुछ 200 माइल पर आवर के हिसाब से होना चाहिए, तो वहाँ पे ये क्या करता है, जो एयरोस्टेस होती है उसको भी जाके कॉकपिट में बंद कर देता है, और उसको बोलता है अब यहाँ से निकलना नहीं है। तो 20 मिनट हो जाते हैं और पायलट को कुछ नहीं पता, ना ही एयरोस्टेस को पता है कि पीछे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। लेकिन अचानक से जो वो सिक्योरिटी सिस्टम्स बने रहते हैं तो उनका वो लाइट ब्लिंक करने लग जाती है कॉकपिट में, और उनको पता लग जाता है कि जो वो सीढ़ियां थी अब खोली गई हैं। लेकिन सीढ़ियां सिर्फ आधी खोली गई हैं, पूरी नहीं। और फिर 5-7 मिनट हो जाते हैं, अब उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पायलट क्या करता है, वो लाउड स्पीकर सिस्टम पे उठा के और वो फोन पे भी लगा के बोलता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम बताओ। वो तो बेसिकली चेक कर रहा होता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो उसी वक्त डैन कूपर दोबारा वापस फोन पे आता है और बोलता है कि सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। और उसी के 1 मिनट बाद जो है दोबारा से वो लाइट ब्लिंक करने लग जाती है कॉकपिट के अंदर, और इस बार ये सिग्नल होता है कि वो पूरा का पूरा जो स्टेप्स होते हैं वो 10 के 10 सीढ़ियां खोल दी गई होती हैं। और बस उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई है, अगर तुम हो वहां पे बताओ, कुछ नहीं। तो फाइनली एक सामने एक शहर आता है रेनो करके अमेरिका में, वहां पे प्लेन लैंड कराया जाता है, और वहां पे उनको पता लगता है कि जो वो डीबी कूपर था वो पैराशूट के साथ, तो वो 2 पैराशूट छोड़ गया था, उसकी एक टाई रह गई थी, और बाकी जो वो पैसे वाला सैक था और जो बाकी 2 पैराशूट थे वो दोनों सब गायब थे। तो ये था कि वो कहीं ना कहीं से पैराशूट से कूद गया था, और वो इतना चालाक था कि जिस नोट पे उसने वो लिखा था कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है, वो शीट भी जो है वो वापस लेके वहां से चला गया था, वो भी शीट कभी रिकवर नहीं हुई। तो पूरे के पूरे नेचुरल सी बात है, सारी पुलिस टीम्स लग जाती हैं सर्च में, वो जो पूरा एरिया होता है जहां से सिएटल से प्लेन उड़ा था, और जहां पे वो ट्रायंगुलेट करते हैं कि इस इलाके में वो गिर सकता है। लेकिन बात ये थी कि जब ये कूदा था तो वो रात वेदर जो है बहुत ज्यादा खराब था। इनफैक्ट बाद में पता लगा कि वो प्लेन जिसको इसने बोला था कि तुम 10,000 फीट पे उड़ाना, वो प्लेन 10,000 फीट पे नहीं था, वो प्लेन 7,000 फीट पे था। वेदर काफी ज्यादा खराब था, और क्योंकि प्लेन के दरवाजे भी खुले हुए थे इसलिए प्रॉपरली प्लेन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। और जिस दिन ये कूदा है वहां से, उस दिन इतनी बारिश हुई है कि अगले 2 दिन तक इतनी बारिश हुई है कि हेलीकॉप्टर्स ऊपर जा भी नहीं पाए सर्च करने के लिए। इनफैक्ट 2 दिन बाद जाके वेदर क्लियर हुआ है कि हेलीकॉप्टर्स गए हैं, लेकिन वो काफी ठंडा इलाका था तो वहां पे पूरा स्नो वगैरह था। तो प्रॉपर सर्च जो स्टार्ट हुई थी वो 3-4 महीने बाद, जब मार्च में वो थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ, स्नो हटा, तब उन्होंने सर्च स्टार्ट की कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, क्या था, क्या वो आदमी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। खैर अब 1971 नवंबर में ये हुआ था, लेकिन तो इनको खैर वो आदमी नहीं मिलता है, लेकिन February 1, 1972 को एक लोकल न्यूज़पेपर को एक फोन आता है कि जिस डैन कूपर को तुम लोग ढूंढ रहे हो उसको मैं जानता हूं, और अगर तुम्हें इंटरव्यू चाहिए तो मैं इंटरव्यू दिलाने के लिए तैयार हूं। तो खैर क्या थी इस डैन कूपर की कहानी, क्या वो कूद के सही में बच गया था, क्या वो मर गया था, क्या हुआ इसके साथ आगे, और क्या वो इंटरव्यू दे पाया, क्या वो सही, क्या वो आदमी भी सही था कि नहीं था, ये जो भी सारी चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले हफ्ते वाले एपिसोड में। थैंक यू।